मुख्य समाचारों में विक्टोरिया में अब सेना के जवान संपर्कों का पता लगाने के लिए तैनात। ट्रेजर ने तैयार की ऑस्ट्रेलिया के लिए अपनी आर्थिक योजना की रूपरेखा और चीन के साथ तनाव के बीच भारत ने बदले व्यापार के नियम। और लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के लिए उन्मूलन रणनीति के बजाय एक दमन रणनीति को ही जारी रखेगा। कोविड 19 से विक्टोरिया में 6 और लोगों की मृत्यु हुई है और राज्य में 300 और मामले दर्ज किए गए हैं। वर्तमान में इस महामारी प्रकोप से निपटने के लिए देश भर में 3100 से अधिक सेना के जवान तैनात हैं और इनमें से आधे से अधिक विक्टोरिया में तैनात हैं। श्री मॉरिसन ने कहा है कि प्रकोप की निगरानी के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस स्थापित किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सीमाओं के बीच माल की आवाजाही सख्त प्रोटोकॉल के तहत ही होगी।
I think the events both in Victoria and New South Wales are a reminder. The virus is still out there, it'll still make its way, and it'll still throw everything at us, and we must be prepared to respond. You can do it with outbreaks, you can get on top of them, but you've got to be constant about it, and you've got to throw everything at it. And we will get on top of it in Victoria, because there is the determination and the cooperation to achieve that.
ट्रेजरर जोश फ्राइडनबर्ग का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया अन्य देशों की तुलना में बेहतर रिकवरी की स्थिति में है। फेडरल सरकार ने कोरोना वायरस सहायता पर $300 बिलियन का खर्च किया है और राज्य और टेरिटरीज ने $42 बिलियन खर्च किए हैं। नेताओं ने 15 प्रमुख परियोजनाओं को तेजी से शुरू करने के लिए सहमति व्यक्त की है जो लगभग $72 बिलियन की हैं और इससे कोई 66,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा हो सकेंगे। श्री फ्राइडनबर्ग ने कहा है कि कोरोना वायरस समर्थन का अगला चरण विकास को सक्षम करने पर केंद्रित होगा।
Two world wars and a depression didn't bring Australia to its knees, and COVID will not either. While we will continue to provide fiscal support through the crisis, sustainable growth will only come from creating the most dynamic and the most flexible economy we possibly can. And that is how we can get Australians back into work as quickly as possible.
Coronavirus se Victoria mein 6 aur logon ki mrityu ho gayi hai aur ye sabhi एज्ड केयर से जुड़े हैं। मृतकों में से 3 लोग 90 और 3 80 वर्ष की आयु के दशक में थे। इस तरह ऑस्ट्रेलिया में कोविड 19 की वजह से मरने वालों की संख्या 130 से ऊपर हो गई है। विक्टोरिया के बेलराट में मूल निवासी समुदायों में 2 नए कोरोना वायरस मामलों का पता चला है, इसलिए अब मेलबर्न और मिचलशायर के साथ साथ क्षेत्रीय विक्टोरिया के स्वदेशी लोगों को भी फेस मास्क पहनने के लिए आह्वान किया जा रहा है। विक्टोरिया में आज 300 नए कोविड 19 मामलों की रिपोर्ट हुई है। राज्य में 206 लोग इस समय वायरस की वजह से अस्पताल में हैं, जिनमें से 41 इंटेंसिव केयर में हैं। विक्टोरियन प्रीमियर डेनियल एंड्रयूज का कहना है कि ऑस्ट्रेलियन रक्षा बल के जवानों की सेना का उपयोग अब विस्तृत रूप से सीधे तौर पर उन लोगों के संपर्कों का पता लगाने के लिए किया जाएगा जिन्होंने सकारात्मक परीक्षण किया है।
So one of those 300 people who's tested positive today, they are telephoned. They are telephoned again within a 2-hour period. If contact cannot be made with them via those 2 telephone calls in a 2-hour period, then ADF and authorised officers will be deployed to go and door knock those people and to conduct that interview on their doorstep, as opposed to doing it over the phone.
न्यू साउथ वेल्स में सामुदायिक संचरण यानी कम्युनिटी ट्रांसमिशन के परिणाम स्वरूप कोरोना वायरस के 7 नए मामलों की सूचना है। 6 मामले थाई रॉक रेस्टोरेंट से जुड़े हुए हैं, जिससे इस क्लस्टर का आंकड़ा 52 तक पहुंच गया है और 1 मामले का कोई ज्ञात सूत्र नहीं है। 6 मामलों में से 3 अवर लेडी ऑफ लेबनान चर्च से जुड़े हुए हैं और 3 अन्य मामलों के करीबी संपर्क के हैं। Deputy Chief Health Officer Jeremy McAnulty New South Wales ke niwasiyon se satark rehne ka aagrah kar rahe hain.
While most cases have been linked to known clusters, community transmission continues, and New South Wales Health is calling on people across the state to redouble their efforts to stop the virus spreading. Key messages for the community are avoid non-essential travel and gatherings. Of particular concern is transmission in venues such as hotels and restaurants, the gym and social gatherings.
विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेशन को कम करने से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा. देश में आने वाले स्थायी और अस्थायी प्रवासियों की संख्या में इस वित्तीय वर्ष में 85% की गिरावट आई है. ट्रेजरी का बजट अनुमान इस धारणा पर आधारित है कि अगले साल 1 जनवरी को सीमाएं फिर से खुलेंगी, जिससे बहुत अधिक आर्थिक राहत मिलेगी. डेलॉयट के अर्थशास्त्री क्रिस रिचर्डसन का अनुमान है कि माइग्रेशन में कमी से अगले 2 वित्तीय वर्षों में अर्थव्यवस्था पर $50 बिलियन तक का असर पड़ सकता है.
That's a hole in the Australian economy. Come the end of 2021, there will probably be 250,000 fewer people in Australia than we'd been expecting before the virus, right? That's a big number who aren't here. It has impacts on everything from the number of homes and apartments that we'll build to the amount that gets spent at the shops.
भारत ने पड़ोसी देशों से व्यापार को लेकर नए नियम जारी किए हैं. इन नए नियमों के तहत भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों की कंपनियों के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं. ये फैसला सैन्य और राष्ट्रहित से जुड़ी चिंताओं के आधार पर लिया गया है. भारत के इस कदम को चीन के खिलाफ भारत की ओर से आर्थिक मोर्चे पर उठाए गए नए कदम के रूप में देखा जा रहा है. सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ऐसे पड़ोसी देशों जिनकी सीमा भारत से लगती है, उनकी कंपनियां भारत में तभी पैसा लगा सकेंगी अगर वो संबंधित प्राधिकरण के तहत रजिस्टर्ड हैं. इस आदेश में कहा गया है कि पंजीकरण के लिए प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की ओर से बनाई गई रजिस्ट्रेशन कमेटी के पास जाना होगा. वहीं राजनीतिक और सुरक्षा हितों से जुड़ी क्लियरेंस लेने के लिए विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से अनुमति लेनी होगी. ये आदेश हर तरह की खरीद वस्तु और सेवाओं और प्रोजेक्ट्स पर लागू होगा, लेकिन 31 दिसंबर तक कोविड-19 से जुड़ी मेडिकल सप्लाई की खरीद पर छूट दी गई है. सरकार ने यह भी बताया कि एक अलग आदेश के तहत भारत ऐसे देशों को पहले से रजिस्ट्रेशन की शर्तों में छूट देगा जिनको उसने लाइन ऑफ क्रेडिट दे रखा है, या फिर ऐसे देश जिनको भारत विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स में सहायता देता है. 15 जून को चीन के साथ हुई हिंसक झड़प के बाद चीनी सामान के बहिष्कार की मांग उठाई जा रही है. इसके बाद से भारत ने देश में सरकारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर अपना सामान बेच रही कंपनियों को सामानों पर उनके कंट्री ऑफ ओरिजिन की जानकारी देने को अनिवार्य कर दिया था. और इसके अलावा भारत सरकार ने 59 चीनी मोबाइल एप्लीकेशंस को भी बैन कर दिया है. और भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के एक बार फिर एक दिन में सबसे अधिक 49,000 से अधिक मामले सामने आए हैं. इसके साथ ही अब देश में कुल दर्ज मरीजों की संख्या 12,87,000 के ऊपर हो गई है. मृतकों का आंकड़ा भी 30,000 के ऊपर चला गया है. भारत में रिकवरी रेट इस समय 63.45% है और पॉजिटिविटी रेट 13.97% रिपोर्ट किया गया है. और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की. ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के 70 सेंट और भारत के 53 रुपए के बराबर है. खेल समाचारों में, भारत में बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार बहुप्रतीक्षित इंडियन प्रीमियर लीग 19 सितंबर से यूएई में शुरू हो सकता है और फाइनल 8 नवंबर को खेला जाएगा. इस तरह से ये 51 दिन तक चलेगा और ये फ्रेंचाइज और प्रसारकों के अलावा अन्य हितधारकों के अनुकूल होगा. ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि आईपीएल 26 सितंबर से शुरू होगा, लेकिन बीसीसीआई इसे एक सप्ताह पहले शुरू करना चाहता है ताकि भारतीय टीम के ऑस्ट्रेलियन दौरे पर असर ना पड़े. और अब बात मौसम की। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी शनिवार को पर्थ में आंशिक रूप से बादल रहेंगे, अधिकतम तापमान 22 डिग्री, न्यूनतम 8 डिग्री। एडिलेड में भी आंशिक रूप से बादल रहेंगे, अधिकतम तापमान 17 डिग्री, न्यूनतम 7 डिग्री। मेलबर्न में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 13 डिग्री, न्यूनतम 3 डिग्री। होबार्ट में बादल रहेंगे, अधिकतम तापमान 13 डिग्री, न्यूनतम 4 डिग्री। कैनबरा में सुबह के समय फ्रॉस्ट, एक दो बौछारें, अधिकतम तापमान 15 डिग्री, न्यूनतम -1 डिग्री। सिडनी में बौछारें, अधिकतम तापमान 18 डिग्री, न्यूनतम 10 डिग्री। ब्रिस्बेन में बौछारें, अधिकतम तापमान 21 डिग्री, न्यूनतम 15 डिग्री। और डार्विन में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 32 डिग्री, न्यूनतम 19 डिग्री। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।